बहुत ही सौभाग्यशाली है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि स्वयं भगवान ने हमको ऐसी सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हैं। उस ज्ञान के सागर ने हमको ज्ञान से भरपूर किया है और अपने साथ ईश्वर के साथ कैसे हम अपना संग करें, उसको कैसे याद करें, वो भी एक तरीका बताया है, मेथड बताया है। और सभी संबंधों का हम सभी को अनुभव भी कराया है। हम सभी को त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनाया है। अभी देखो, हम याद में बैठे थे, केवल 3-4 मिनट बैठे थे, ऐसे साइलेंस में चले गए कि हम उसमें बैठे ही रहे, नीचे आने को मन ना करे, नहीं करता था। बाबा कहते हैं ऐसा भी समय आएगा, जैसे अभी आवाज में आना बड़ा आसान है, आवाज से परे जाना थोड़ा कठिन लगता है, परंतु ऐसा समय इतनी हमारा अभ्यास हो जाएगा कि आवाज में आना मुश्किल लगेगा और आवाज से परे जाना आसान रहेगा। भाई बैठे रहे उसमें तो कितनी अच्छी, ऐसा अनुभव होता है। इसी बाबा की याद में बैठे रहे, उस मजे में, वो खुशी में, उस शांति के सागर की लहरों में लहराते रहे, ऐसा चाहता है मन, परंतु क्योंकि सुनाना था कुछ इसलिए नीचे आना। तो मुझे कहा गया कि बाबा मम्मा के साथ के अनुभव सुनाए। हम सभी तो सौभाग्यशाली है ही है, परंतु अपने को मैं और ही ज्यादा समझता हूं कि भाग्य है कि स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती और सारे पूर्वज हमारे जितने भी अभी तक गए हैं, उन सभी के साथ मिल करके सेवा करने का मौका मिला। रियली पहले तुम्हारे हैं बाबा मम्मा तो है, शिव बाबा भी उनके साथ है और जितने भी पूर्वज, दादा विश्वकिशोर, दादा विश्वरतन, हमारी दादियां, दादी प्रकाशमणि, दीदियां, सबके साथ और भी जितनी भी दादियां थी वो थी। हमारी ड्यूटी ऐसी लगाई थी बाबा ने कि उन सभी के साथ सेवा करने का मौका हमें मिला। बहुत बहुत बड़ा अपना मैं सौभाग्य समझता हूं। और आपने कल यहां शाम को देखी होगी वो नृत्य नाटिका, देखी थी सभी ने आपने, इंदौर जोन की तरफ से जो वो दिखाई गई, उनमें जो मुख्य एक्टर थे कौन थे, वो भाई जी हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी, हम तो भ्राता जी कहते थे, ओम प्रकाश जी, उनके साथ भी आपको मालूम हो 58 साल तक उनके साथ हमारा कनेक्शन रहा 58 साल तक। और बहुत एक खुशी की बात है कि उनके द्वारा ही हमको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला। तीसरा नेत्र में देने वाला तो स्वयं भगवान है, शिव बाबा, और कोई नहीं, नोबडी कैन गिव। परंतु किसी को निमित्त बनाता है तो हमको उनके द्वारा ही ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और जीवन का सारा रास्ता बदल गया। क्या थे हम पहले? हम सोचते हैं कभी अगर हमें ये ज्ञान ना मिला होता तो हम क्या होते? क्या होते आप सोचो, क्या होते हम? वही छोटा सा परिवार और हद, बहुत हदों में फंसे होते। और अभी आप देखो, बाबा ने उस दिन अगर बाप दादा ने क्या कहा कि मुझे इतने बड़े परिवार को देखकर कितनी खुशी हो रही है, हमारा कितना बड़ा परिवार है, 9, 10, 20, 15, 20 कितने लाख हैं। और हम तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, सारा दुनिया ही हमारा परिवार है। तो ये हमें ये भी खुशी है। तो हम आप मैं सुनाता हूं थोड़ा बाबा मम्मा की बातें सुनाने से पहले। हम आज से 59 साल 60 साल पहले 1957, आप में से बहुत तो पैदा भी नहीं होंगे शायद, 57 में हमको ये परिचय मिला। हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे पटियाला में, पटियाला पंजाब की तरफ है, एडमिशन ली थी। पर लोग के माता पिता भाई जी ने कहा कि भाई जो थे हमारे, उन्होंने कहा आपको इंजीनियर बनाना है। एडमिशन मिली, बड़े इंटेलिजेंट थे, बहुत वो थे, काफी आते थे, काफी होशियार थे। तो एडमिशन मिला और हम पढ़ाई करने गए। लेकिन जीवन में कोई वो कहे ना एक शांति हो या खुशी हो, जिसे अब हम समझते हैं, वो नहीं थी। कोई दुख दर्द भी नहीं था, परंतु ऐसा ही था। तो वहां पर हमें हमारे जो भाई जी आप कह रहे हैं, हमारे भ्राता ओम प्रकाश जी, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। उनको भी लोग माता पिता ने कहा इंजीनियर बनो, लेकिन वो 6 मास पहले, अपनी 1 साल पहले ज्ञान में आ चुके थे, तो उनकी पढ़ाई की इच्छा नहीं थी। तो साकार बाबा ने स्वयं उनको एक पत्र लिखा, बच्चे तुम जरूर पढ़ने के लिए जाओ पटियाला में, क्योंकि वहां पर भी बहुत आत्माएं इंतजार कर रही हैं इस ज्ञान को सुनने के लिए। जैसे बाबा ने उनको मेरे लिए भेजा, ऐसा मुझे फील होता है। पहला स्टूडेंट मैं ही वहां निकला। वो रहते थे, हम हॉस्टल में रहा करते थे इकट्ठे। हमारा रूम नंबर 113 था, उन्हें 112 था, हम डिटेल बता रहे हैं। तो वो उनको हम देखते थे बड़े आवेश, ज्ञान मिलने के बाद तो अंतर्मुखी हो जाते हम सभी। कोई आप जानते हो कॉलेज स्टूडेंट तो कैसे होते हैं, आप जानते ही हैं कितने उनकी बाह्य मुक्ता होती है, पिक्चर देखना, ये देखना, हम सब में था ये चीज, हमारे में था। उनको देखे वो सारा दिन अपना कमरा बंद करके कुछ ना कुछ फूलियां पड़े, कुछ करे, ऐसा उसमें ही मस्त रहते थे। कोई किससे बात नहीं करते थे, वो देखते थे मैं उसको ज्ञान दूं जो कुछ समझने के लायक भी हो। बाबा कहते ना डंक वहां लगाओ जो नरम जगह हो। स्टूडेंट्स तो आप जानते कैसे होते हैं, वो तो खाना पीना मौज करना और कैरम खेलना, ये खेलना, ताश, सब बातें करते थे, पिक्चर देखना खूब। तो वो देख रहे थे मैं किसको ज्ञान दूं जो कि इस ज्ञान को समझने के लायक भी हो। हम उनका दरवाजा खटखटाते थे तो वो बहुत देर के बाद खोलते थे, कि आपके अंदर क्या खजाना पड़ा है, क्या आपने बंद करके रखा, तुम दरवाजा खुला क्यों नहीं रखते और खोल के नहीं खोलते बहुत देर में क्यों? क्योंकि उनके सिराने के नीचे मुरलियां होती थी या और लिटरेचर होता था। वो कहते मैं ये देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे या और ही कहेंगे ये क्या चीज है। तो मैं बहुत उनसे पूछता था तो बताते नहीं थे। एक बार क्या हुआ, और मुझे उनने मेरे से वो पहला लेसन शुरू कर दिया कि आप आत्मा है ना कि शरीर है। हम कहेंगे हम तो शरीर है, आत्मा कैसे है, ना दिखती है, हम कैसे कि आत्मा है माने हम, ये तो मशीनरी है, कोई एक पुर्जा फेल होगा तो मशीनरी रुक जाएगी, खत्म हो जाएगा, उसको और ज्यादा पुर्जे फेल होंगे लोग निकाल देंगे, खत्म कर देंगे, जला कुछ भी कर देंगे। आत्मा का है, कोई दिखती तो है नहीं कोई चीज, क्या बात है। खैर हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले तो मानते थे आत्मा, लेकिन उसको डिस्कशन करते रहे कई दिन तक, वो आत्मा है क्या, मैं क्या, हम तो नहीं आत्मा। तो आखिर में एक दिन उसने कहा भाई साहब, भाई जी ने, कि आप आज मान जाओ कि आप आत्मा है। हम तो अंदर से तो मानते थे क्योंकि बचपन में बहुत भक्ति की हुई थी, बहुत एक टांग पर खड़े होकर भक्ति की, बहुत भागवत रामायण महाभारत हमारे लौकिक फादर भगत तुमने बहुत सुनाया हुआ था, बहुत सारी हमें कथे कहानियां किसे आते थे वो सब जितनी है ना हमारी वो भागवत में या उसमें रामायण में सब सुना हुआ था, देखा हुआ था। तो हम तो मानते थे, लेकिन उस दिन कहा आप मान जाओ कि आप आत्मा है। चलो मैंने कहा ठीक है, आज आपकी बात मान लेता हूं कि मैं आत्मा हूं। बस इतना ही कहना था कि मैं आत्मा हूं, इतना कहा उसी वक्त से अनुभूति शुरू होगी। हम बताए आप, जैसे बाबा ने रस्सी खींच ली, अंतर्मुखता आ गई, कुछ सब बातें छूटती गई, कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, औरों का जो कॉलेज के स्टूडेंट का संग ये वो सब छूट गया, अंत एकदम आंतरिक अंदर ही जैसे चले गए। वो भी आश्चर्य कही ये क्या एक दिन में क्या इनको हो गया, हम भी कहे ये क्या हो रहा है। हमने कहा भाई इतना आपका ऊंचा ज्ञान है, ये बड़ी सुंदर चीज है, हमें और सुनाओ। फिर हमें दो तीन दिन में सारा ज्ञान सुन लिया और ऐसा लगे कि ये तो मैंने पहले सुना हुआ है। सच बताया आपको, मुरली सुननी शुरू कर दी, हाँ ये तो जैसे बाबा ने पहले सुना रखी है, ऐसा लगे हम बिल्कुल नजदीक के हैं। बस वो देख के आश्चर्य भी लगे ये, और किसी पॉइंट पर संशय की बात नहीं, क्वेश्चन नो क्वेश्चन अटाल, सब बातें अजीब है। परमात्मा शिव है, कमाल है, आज तक किसी ने नहीं कहा। आप सोचो परमात्मा शिव है, आजकल शंकर ये वो कितनी बातें, राम कृष्ण हनुमान कितने परमात्मा बना रखे है। उन्होंने कहा परमात्मा शिव ज्योति बिंदु, हो सकते ज्योति ज्योति बिंदु नहीं कहते थे, ज्योतिर्लिंगम कहते थे, ठीक है ना, इसका नाक है ना मुंह है ना कान है ना वो है हाथ, बिन पग चले वो, तो ऐसा फिट बैठता गया बुद्धि में ज्ञान, इसके अलावा परमात्मा हो ही नहीं सकता, और राम कौन है, कृष्ण कौन है, हनुमान कौन है, सारी बात उन्होंने सुना दी। गीता का भगवान का ना, मैं बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और हूबहू रिपीट होता है, ऐसा जचा मुझे कि बात मत पूछिए, कितनी वंडरफुल पॉइंट है। आप बताओ, हिस्ट्री इज नॉट लीनियर, इट इज सर्कुलर साइक्लिक, किसी को पता नहीं, आप जाकर पूछो वो क्या कहेंगे, 4,32,000 ये वो, कितनी बात, इतना कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को बता दिया, बात मत पूछ, किसी को पता नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु सन्यासी, किसी को पता नहीं कि सृष्टि चक्कर हूबहू रिपीट होता है। ये अच्छा लगा, गीता में हमने पढ़ा हुआ था, ये अर्जुन हम अब भी है, पहले भी थे और अब मिलते रहेंगे, यही कहता है ना ये बात, ये हिस्ट्री साइक्लिक है, हम पहले भी मिले थे, आप भी मिले, फिर भी मिलते रहेंगे, रहोगे। फिर कहा बनी बनाई बन रही है, आप कुछ बननी ना रही, कितना वंडरफुल बात है, बनी बनाई फिर बन रही है, कोई नई बात नहीं है, हम यहां बैठे हैं देखो कितनी, अभी बैठे हैं फिर बैठेंगे फिर बैठते ही रहेंगे। हिस्ट्री रिपीट्स, इतना अच्छा लगा मुझे, लोगों को तो इस पर पता नहीं वो लगता है कि क्या बात है, इतना अच्छा पॉइंट लगा कि बात मत पूछे, सारा ज्ञान इतना लगा ये कि आप कम बात नहीं है, हमारा नॉलेज जो है बाबा ने जो ज्ञान दिया है बहुत वंडरफुल है, हम बता दें आपको बहुत एक्सपीरियंसेबल है, कोई यानी कि आप मान लो इसमें नहीं है, अपने खुद एक्सपीरियंस होता है, रैशनल है, रैशनल रैशनल समझते, कोई भक्ति मार्ग का अंश नहीं है, रैशनल है, बुद्धि गम्य है, बुद्धि को लगता है जचता है। जब ये ज्ञान सुना तो कपाट खोल गया हमारे, तो मैं कमाल है ये ज्ञान तो, और अब ये निश्चय हुआ कि स्वयं भगवान के कोई ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। सुन लो आप, नो ह्यूमन बीइंग कैन गिव दिस नॉलेज, सो इतना सुंदर नॉलेज है, इतना सुंदर ज्ञान है, कोई इंसान का कोई महान आत्मा इंसान कोई शास्त्र कहीं भी नहीं है। अब तो शिव और शंकर में अंतर, बात क्या किसी ने आज तक पहले कहा था, अभी भी लोग क्या मानते हैं, एक ही है शिव शंकर, उसे वो गंगा निकली ये निकली, यानी कितनी बातें वो अंधश्रद्धा में है, और बाबा ने हमारी सब कपाट खोल दिए, बुद्धि का ताला खोल दिया, बड़ा मजा और आनंद आ गया बहुत। हम ये बहुत खुशी हुई मुझे, मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा था आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा था, खुशी अति खुशी का दिन कौन सा था आप बताओ, मैंने कहा जब मुझे ये ज्ञान मिला That was my happy day. I tell you. आप भी सोचो, आप विचार करो, जब आपको किसी बहन जी ने या किसी भाई ने या किसी बहन को ज्ञान सुना आपने, तो आपको खुशी हुई थी कि नहीं हुई थी? बोलो हाँ या ना? हुई, बहुत खुशी होती है। क्या कमाल का ज्ञान है बताओ मुझे, वंडरफुल ज्ञान है। आई टेल यू, वो है ना गीता में, वो हमारे शास्त्रों में है, विष्णु जी वो लेटे हुए हैं, शेष नहीं है पर जो दिखाते हैं और बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ना? तो लक्ष्मी कहती क्या बात है आप अब मुस्कुरा रहे हैं, क्या मेरी किसी सेवा में कमी है? उसने कहा नहीं, मैं गीता ज्ञान को सिमरण करके बहुत खुश हो रहा हूं। हम बाबा हमारे भी ऐसे, जब साकार ब्रह्म बाबा भी जब ज्ञान सुनाते थे मस्ती होती थी, बहुत खुशी होती थी, कभी कभी बाबा मुस्कुराते थे। एक दो दादी जानकी जी कहते हैं वो खग्गिया मारते थे, कहते इतना ऊंचा ज्ञान मुझे मिल गया, मैं क्या बनने वाला हूँ? श्री कृष्ण बनने वाला हूँ, विष्णु मैं बनने वाला हूँ। जो हमको जब ये ज्ञान मिला बहुत खुशी हुई, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा उसको ये हमारा खुशी का दिन था, पहला पहला खुशी का दिन। हमने कहा भाई आपको ये ज्ञान कहां से मिला हमें बताओ तो सही, इतना ऊंचा ज्ञान किसी शास्त्र में नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आप देखो एक एक परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, 84 लाख यूनिया नहीं, कितनी बातें हैं जो दुनिया से मतजाद है। तो हमने फिर उनसे क्या और बताओ, सारा ज्ञान सुन लिया, अभी किस कहां से मिला है? उनने कहा ये प्रजापिता ब्रह्मा, उस वक्त कोई त्रिमूर्ति जाल भी नहीं थे जब हम आए थे, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा है जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, सारा सुनाया और वो ये ज्ञान दे रहे हैं। मैंने कहा हम तो मिले उनसे जाके, जैसे बाबा कहते ना जिसको निश्चय होगा तो भागा होगा नंगे पैर मिलने के लिए, हम भी चले बाबा से मिलने के लिए। 1 हफ्ता 10 दिन वो होंगे, तो बाबा उन दिनों में क्या करते थे, जब वो दिल्ली में आते थे, दिल्ली या बॉम्बे जाया करते सर्दियों के दिनों में, हम गए बाबा के पास मां रजौरी गार्डन, मैं जल्दी जल्दी सुनाऊंगा ताकि टाइम हो, वहां पर गए राजौरी गार्डन है दिल्ली में आए हुए थे। तो रात्रि को 11 बजे पहुंचे, फर्स्ट टाइम कैपिटल में जा रहे थे, लेकिन कोई नहीं अपने घर जा रहे, ऐसा फीलिंग आती थी कोई खींच रहा है हमको, बताया। वहां पहुंचे सुबह बाबा मम्मा से मिलने का मौका मिला, जिसे क्लास होती है ऐसे मिलाया, कोई ब्राह्मणी नहीं कोई नहीं। अच्छा तो बाबा मम्मा को देखा, कैसे बाबा मम्मा थे आप चित्र तो देखते, हमने साकार में देखा, पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती, जिसे एडम कहते हैं, जिसे महावीर कहते हैं, जिसे आदम कहते हैं, बताइए इतने उनके टाइटल है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड जो पहला था, उनको रूबरू हम मिल रहे थे। देख के क्या था, टावरिंग पर्सनैलिटी, जबरदस्त पर्सनैलिटी, शाइनिंग फेस आई टेल यू, चमकता हुआ चेहरा और बिविचिंग आईज, आंखों में जैसे जादू कहे या खिंचाव। तो देख के, देखते ही बाबा मम्मा को कहा कि वास्तव में यही हमारे रियल में माता पिता है, ये निश्चय हुआ उस वक्त उनको देख करके, अभी बोला भी नहीं, देख करके। तो बाबा मम्मा से मिले, परिचय कराया, उनको पता था शायद। हेलो देखो पहले पहले बाबा ने क्या वरदान दिया, क्या वरदान दिया होगा, देखा बच्चा अच्छा है, ठीक है वो तो है। बाबा ने कहा बच्चा, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पति फर्स्ट ईयर था शायद, हाँ पढ़ते थे, पास किया था। बाबा ने कहा बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी लंबी बड़ी तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ये देखो ये वरदान, भगवानों वाच, कौन बोल रहा है, भृगु ऋषि कौन बोल रहा था, देखो इंसान नहीं हम तो भगवान खुद बोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये विनाश सामने खड़ा है, सिर पे खड़ा है, सामने खड़ा है, ये तो पढ़ाई है तुम्हारे कोई काम आने वाले नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है, हमें तो पहले बार आगे आ चुका था, हमने कहा बाबा हम नहीं पढ़ेंगे। तो वहां से मिलके बाबा मम्मा से मिलके पावर भर के हम आए, तो कह दिया पढ़ाई हम के, बाबा ने कहा था कि आप पढ़ने, लेटर लिखा हमने बाबा को इंग्लिश में, किसको लिख रहे थे, ब्रह्मा बाबा पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के थ्रू बाबा मीन बोथ। जब हम बाबा बोलते हैं कि वो शिव बाबा अलहदा ब्रह्मा बाबा अलहदा, बाबा बोथ आर टूगेदर। वो बाबा तब बना जब बाबा शिव बाबा आया, तभी तो बाबा कहते हैं उसको। पत्र लिखा बाबा, इंग्लिश में लिखा, बाबा ने इंग्लिश में जवाब भी दिया, आपने तो पहले बताया नहीं मैंने किसी को। मैंने कहा बाबा आपने कहा है तो आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड डिजाइन बिल्डिंग, बट आई वांट टू बी ए स्टोन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग यू आर इरेक्टिंग, यू आर कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड। फिर लिखा बाबा आई डोंट वांट टू डिजाइन हाईवेज एंड रोड्स, बट आई वांट टू बी, आई वांट टू रन ऑन द हाईवे गोइंग टू परमधाम एंड कमिंग टू गोल्डन एज। इस प्रकार फिर लिखा आई डोंट वांट टू डिजाइन मशीनरी, बट आई वांट टू बी ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द किंग एंड क्वीन मेकिंग मशीनरी विच यू हैव इन्वेंटेड। ऐसा बाबा को पत्र लिखा। बाबा का दो तीन दिन में जवाब आया, दो दिन में ही। बाबा ने कहा, बाबा ने फिर इंस्ट्रक्शन दी चाइल्ड, इंग्लिश में जवाब आया, बी पेशेंट, थोड़ा सब्र करो, और ये जो ज्ञान है अपने लौकिक परिवार वालों को भी, अब टू योर पेरेंट्स एंड टू गिव दिस नॉलेज टू योर पेरेंट्स एंड टू योर को इंजीनियर्स। ये पूरे शब्द बाबा के लिखे हुए थे, हम रखा नहीं। तो हमने कहा ठीक है, ये बाबा की इंस्ट्रक्शन आई है, तो खूब फिर हमने ज्ञान देना शुरू कर दिया, फौरन ज्ञान देना चालू कर दिया अपने प्रोफेसर को, इंजीनियर्स को, जो हमारे साथी थे सबको। उनने कहा इसको क्या हो गया, ये इसका दिमाग जो है ना थोड़ा घूम गया शायद। वो ऐसे कहते थे, हम तो भाई पहले ज्ञान जानते नहीं, फिर हम उनको ज्ञान सुना रहे हैं, कहते ये इंजीनियर बनेगा या भगत बनेगा ये। हमने कहा वो कहते आइदर द सेंट आर द बीस्ट लिव इन जंगल लिविंग साइलेंस। ये जो बाबा ने लिखा वैसा करने की कोशिश की, अपने जो स्टूडेंट्स से उनको ज्ञान सुनाया, प्रोफेसर को सुनाया, और खूब अपना जो हॉस्टल में रूम था उसमें ही अपनी क्लास लगानी शुरू कर दी। और लेकिन फिर वार्डन ने कहा भाई यहां तो नहीं हो सकता, तो बाहर चले गए, हम अपना मकान लिया। जो हमारे भाई जी थे ओम प्रकाश जी, वो भी वो तो हॉस्टल में रहे, हमने वहां बाहर ही सेंटर शुरू कर दिया। और उस वक्त क्या एक त्रिमूर्ति मैगजीन निकलती थी उन दोनों में, अब तो है ना ज्ञान अमृत, उसमें सिंपल सिंपल आते हैं बातें, अनुभव आते हैं, ये आते कोई वो ज्यादा ज्ञान की वो नहीं आती भी परमात्मा सर्वव्यापिनी, ये गीता का भगवान श्री कृष्ण, वो कम आते हैं, पहले बहुत लिखते थे। तो हम किसी को बांटते थे, कहते ये क्या ज्ञान आपका फिर हम उनसे डिस्कशन करते थे, वो मान जाते थे। इतना नशा था, इतना मोमेंटम था, इतनी जोश था कि हम जो बात सुनाए वो कहते हम बात तो राइट, सर्वव्यापी कैसे है, ये उसको मार रहा है, मारने वाला भी वही और लेने वाला भी वही, क्या बात है ये। इस प्रकार से वहां पर सेवाएं की। फिर बाबा ने कहा कि आप अपने लौकिक परिवार को भी, लौकिक पेरेंट्स को भी दो, घर में गए समर वेकेशन में, सारे अपने माताजी पिताजी सबको ज्ञान देने की कोशिश की, उनको भी ज्ञान समझ आ गया, क्योंकि हमारी वो देख करके ना बात को कहते बात तो ठीक है, ज्ञान तो वंडरफुल है, बहुत अच्छी बात है। तो सारे गांव वालों को सुनाया, तो हमारे लौकिक पिताजी बड़ी भक्ति करते थे, बहुत वो हकीम थे, और साथ में रात्रि को कथा सुनाते थे भागवत मल्ले में जाके, हम भी सुनते थे। उनने कहा ज्ञान तो ठीक है, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, यानी साक्षात्कार कराए, तब मैं मानूंगा। मैंने कहा मैंने तो देखा नहीं, आपको कैसे दिखाएगा, आप अभी बाबा से मिले नहीं, मम्मा से नहीं मिले, कोई दादियों से नहीं मिले, कोई सेंटर पर नहीं गए, तो आपको कैसे दिखाएगा। चलो हम फिर क्योंकि भोग गुरुवार को भोग लगाते हैं, बैठ करके लगाया। तो एक दिन वो एक गुरुवार को वो उठ के खड़े हो गए, और किसी चीज को पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, कोई क्या इनको क्यों उठे और क्यों किसी को पकड़ रहे हैं। वो बहुत देर तक इधर जाए पकड़ने की कोशिश करे, और कुछ समय के बाद वो बड़े उदास होकर नीचे उतरे। मैंने कहा कुछ हुआ तो है जरूर, कुछ बात है तो जरूर, किसी ने اٹھ کر پکڑنا کیا کیا بات ہے یہ؟ میں نے پوچھا، کہتے ہیں کہ میں جب کہیں گیا مجھے ایک بہت سندر چھوٹا سا شریکرشن بچہ دیکھنے کو ملا، اور بھگت تھے، شریکرشن کے بہت بھگت تھے، بہت ہی بھگت تھے، وہ راتری کو بھاگوت اپنے پڑھتے پڑھتے رکھ لیتے تھے اپنے سینے پر، اتنا ان کی بھکتی تھی بابا اور بابا کو تو ہم کہتے ہیں نا بھکت وتسلم، بھکتوں کا پریہ ہے، اس کو ان کی اچھا پورن کرتا ہے، تو کہ دیکھا تو میں نے ضرور، میں پکڑوں تو وہ ادھر جاؤں تو ادھر بھاگ جائے، ادھر جاؤں تو ادھر بھاگ جائے، میرے ہاتھ میں نہیں آیا، میں نے کہا پھر آپ کے بابا جی آئے، کہا بچے یدی تم اس گیان کو پر نشچے کرو گے، سب دھارناؤں کو فالو کرو گے، تب شری کرشن تمہاری گود میں آئے گا۔ تو میں آئی واز ہیپی، مجھے بڑی خوشی، میں نے کہا کم سے کم کوئی تو ہمارے ممبر دھیان میں جانا شروع کیا، یہ کمال ہے، نہ یہاں کوئی دادی ہے، اس وقت بہنیں کہتے، دادی نہیں کہتے تھے، یہاں نہ کوئی برہما کماری ہے، نہ کوئی سینٹر ہے، نہ کچھ ہے، یہ دھیان میں چلے گئے۔ آئی واز ہیپی، میں بڑا خوش ہوا۔ تو پھر اگلے گروار پھر انہیں سب کچھ ٹھیک کر لیا، لہسن پیاز کھانا بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، سب کچھ کر دیا۔ اگلے گروار پھر ہم بھوک میں لگایا، پھر وہ دھیان میں چلے گئے، دھیان میں گئے، پھر شری کرشن جی آئے، اس کو گود میں بٹھایا، بڑے خوش ہوئے، آنسو بایا بہت، اور اتنے خوش ہوئے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، وہ گاؤں والے بھی کہہ رہے یہ بھگت جی کو کیا ہو گیا ہے۔ بس پھر وہ سب اسی بات سے سارا پریوار ہی گیان میں آ گیا، ماتا جی، پتا جی، بھائی، ہم تین سسٹر، ابھی پورا کا پورا جو پریوار تھا اس گیان میں، اس گیان کو فالو کرنے لگا۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1957-58 کی بات ہے، تب سے۔ اور بڑا مجھے بڑی خوشی ہوئی، بابا کو لکھا میں نے، بابا یہ ہمارا لوکک پتا جی دھیان میں جاتے ہیں، بڑا اچھا دیکھا۔ پھر بابا نے کہا بچے میں نے بھی بہت دھیان دیکھا ہے۔ بابا نے کہا یہ دھیان میں نے پھنسنا کہیں، کیونکہ آج دھیان ہے، کل دھیان نہ ہوا تو پھر ہو جائیں گے۔ بابا نے جو میری مجھے خوشی ہوئی تھی بہت، کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، دھیان میں جانا کوئی اس کی زیادہ ویلو نہیں ہے، لیکن مجھے تو بہت ویلو تھی کہ دیکھو ہمارا لوکک فادر، کسی بہن دادی نہیں، کچھ نہیں، وہ دھیان میں جا رہا ہے، بہت خوشی ہوئی۔ اس پرکار سے وہ چل پڑے، بہت اور سارا پریوار چل پڑا، اور ہم دھیرے دھیرے پڑھائی نہیں کرتے تھے، تب تو اب جانتے ہیں کہ کبھی بابا آ رہے ہیں، کبھی مما آ رہے ہیں، کبھی ایگزیبیشن لگی ہے، کبھی سیوا ہے، کبھی بھوگ ہے، کبھی ہم اس میں بزی رہتے تھے، کلاس میں کبھی گئے یا نہ گئے، کیونکہ بابا نے کہا تھا پڑھائی کام آنے والی نہیں ہے، سچ کہتے ہیں آپ کو، ہفتہ ہفتہ مس کرتے، لیکچر کر دیا، حاضری ماری لوگ لگا دیتے تھے، ہم پڑھائی پر انٹرنشن دیا نہیں۔ آئی واز اسٹڈنگ ود ڈس انٹرسٹ، انٹرسٹ کے بغیر میں پڑھ رہا تھا، ہم بتائیں آپ، ایسے چار سال بیت گئے، اور آپ مانیں گے معلوم نہیں کیسے ہم پاس بھی ہو گئے، آپ مانیں گے پاس ہونے کی امید، پاس بھی ہو گئے بتاؤ، لیکن ہم ڈگری لینے نہیں گئے، ہم کیا کریں گے ڈگری، بابا نے ڈگری دیا کیا کریں گے، پھر جب ہمیں پاسپورٹ بنانا پڑا تب ڈگری لینی پڑی، ادروائز ڈگری لینے تب تک گئے نہیں ہم۔ اس پرکار سے ہم گیان میں چلے، بیچ بیچ میں بابا ماما سے ملنا آنا جانا بہت ہو گیا۔ ایک بار میں سناتا ہوں بابا کی بات، ہم جب ایک مما کی بات، جب ہم رجوری گارڈن میں تھے، تو کلاس کے بعد سارا کلاس والے بھی، کچھ بھائی بہن سب جاتے تھے گھومنے کے لیے، ہم بھی ساتھ ساتھ چلتے تھے چھوٹے بچے۔ میں نے جو ہماری برہمنی میں جو ہمیں ملاتی تھی بابا سے، میں نے مما سے بابا سے، یہاں ابھی نئے نئے تھے، بالکل سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم تھے، یہاں چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بھوک بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، کوئی یہاں نہ بھنڈاری ہے، نہ کوئی کسی کو کہتا ہے بھی تم کچھ دو نہ لو نہ، کیا بات ہے، کہاں سے آتا سارا کچھ۔ تو انہوں نے مما سے کہہ دیا، ساسا چل رہے تھے، مما نے مسکرائی، مما ہمیشہ جب بھی بات کرتی تھی مسکرا کے، کوئی بات سنائیں گی مسکرا کے، پہلے مسکرانا پھر بات کرنا۔ مما نے اوپر ایسے کر دیا اشارہ، یعنی اوپر سے جیسے آتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا پتا دادیاں وہ بہنیں دھیان میں تو جاتی ہیں، بابا کیا پتا بھیج ہی دیتا ہوں ان کو، پتہ نہیں ہے سچی، وہ سب بالکل بھولے بھالے، ہم ابھی 20 سال کی ہماری ایج تھی، ہمیں کوئی دنیا دیکھی نہیں تھی۔ میں نے کہا جب ہماری دھیانی دادی تھی ایسے جاتی تھی، کبھی وہ ہار دے گی، کبھی وہ پھول دے گی، ہمیں دیتی تھی، سب کوروں کو بھی دیتی تھی۔ میں نے کہا بابا بھیج ہی دیتا ہوں، اگر کوئی کسی کو اشارہ بھی نہیں کرتا تھا کہ بھی کچھ کرو، अभी आजकल तो बहनें लिखवाती हैं भी मकान बनना है तो ये आपको ये करना है, आपको ये करना है, कोई इशारे की बात नहीं थी। इतना इतना वहां पार्ट था वो, तो ये मैं सुना रहा हूं कितना बेगरी पार्ट होते हुए भी कितनी रॉयल्टी थी वो। तो ठीक है, तुम एक दफा मधुबन में आए, फर्स्ट टाइम मधुबन में आए, मधुबन कैसा था आप बताया ऊपर का? ये तो था ही नहीं, पांडव भवन, कोई बिल्डिंग नहीं थी, स्वयं बीच का जो टीन का है ना, वो टीन का मकान बना, ऊपर टीन छत है, अब तो बहुत इंप्रूव हो गया, पहले टीन का मकान था। बाबा मम्मा का कमरे वहां रहते थे, जहां बाबा का चित्र रखा हुआ है, तो वो बाबा कमरा था, एक पलंग था, एक गद्दी होती थी, और पहला चित्र वो था, टेनिस कोर्ट था, जहां भी शांति स्तंभ है वो टेनिस कोर्ट था। हम जब आए कॉलेज में पढ़ते थे, ब्लेजर पहना हुआ था, कैमरा हमारे पास था। बाबा को उस वक्त 80 साल की उम्र होगी, 80 ईयर्स। बाबा बच्चों के साथ क्या खेल रहे थे मालूम है? क्रिकेट खेल रहे थे। जैसे अभी आपने गलियों में वो डालते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं ऐसे, तो बच्चे बच्चों को बहलाने के लिए वो एक हमारे दादा बेचुरदम थे, वो ऐसे डालेंगे, बाबा लगाएंगे जोर से, बच्चे पकड़ेंगे, हंसेंगे, बहलेंगे। ये मैंने कहा कमाल, 80 साल के बुजुर्ग क्या है खेल रहे हैं बताओ। मैंने फोटो लेने की कोशिश की, फोटो ली तो बड़ा जबरदस्त है, उसका कैमरा भी घटिया किस्म के होते थे। तो बाबा ने खेल रोक दिया, कहता बच्चे नो फोटो, फोटो मत खींचो। मैंने ठीक है, कोई बात होगी। फिर बाबा ने कहा बच्चे, बाबा ने महावाक्य उच्चारण किया उस वक्त खेल को रोक करके। क्या बात, बाबा ने क्या कहा बच्चे, मेरा फोटो तो आएगा नहीं, कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा था? शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा दोनों की आत्मा, मेरा फोटो तो आएगा नहीं, वो कैमरे में तो आएगा नहीं, और ये शरीर छीछी है, क्या करना है फोटो? नहीं, बाबा हमेशा शरीरों से बुद्धि निकाल करके आत्मा में टिकाते थे या शिव बाबा में टिकाते थे, ये बाबा का फरमान था। मैंने कहा ठीक है बाबा, आपने कहा, इसलिए मेरा कोई भी फोटो बाबा के साथ नहीं है। इतने साल रहा मैं, 12 साल, कोई फोटो हमने खिंचवाया नहीं। ये देखा यानी बाबा हर बात में जो कहते थे बच्चे अशरीरी बनो, मुझे मिलते हो बाबा, हम जब जाएंगे बाबा के साथ घूमने के लिए, बाबा आप वो पीछे मुड़ते थे, किसके साथ चल रहे हो? बाबा पूछते थे किन के साथ चल रहे हो? बाबा से कोई बहन या भाई या कोई सब मिलते थे, किससे मिल रहे हो? बाबा पूछते थे, शिव बाबा से मिलना है, इस शरीर से नहीं मिलना। ऐसा बाबा कहते थे कि हमेशा हर बात में शिव बाबा से बात करो। मैं ज्ञान नहीं दे, ज्ञान देने वाला वो, आजकल तो गुरु गुस्सा क्या करते हैं, पांव को हाथ लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बाबा कहते थे नहीं, देखना है तो शिव बाबा को, याद करना है तो शिव बाबा को, हमेशा निराकार शिव बाबा की याद ही कराते थे। तो ये हमने वो देखा, तो ये भी अच्छा एक लगा कि भाई आत्मा को देखना ना कि शरीर को देखना, ये अच्छी बात, ये लेसन दिया हमको। इस प्रकार से मिलते रहे, आते रहे, जाते रहे। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, हम इंजीनियरिंग पास कर ली विदाउट बगैर पढ़ाई लिखाई के, पास भी हो गए। फिर पास होने के बाद बाबा मामा के पास आए, अपने लौकिक माता पिता को भी लेके आए, जो बहुत ध्यान में आते थे पिताजी बहुत। और बाबा ने कहा बच्चे, तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट डे कि ये पढ़ाई तुम्हारे काम नहीं आएगी। तब बाबा ने हमको सेवा पर लगा दिया। सुन लो, पहला दिन था जो ज्ञान मिला, खुशी का दिन था, बहुत खुशी हुई। जब बाबा मामा से मिले, हमारे अलौकिक माता पिता है, उसको देख के और हैप्पियर हुए, पहले हैप्पी फॉर हैप्पियर। जब बाबा ने कहा बच्चे तुम सेवा में लग जाओ, तो वो दैट वाज माय हैप्पीएस्ट डे, यू मस्ट नो। उस झंझट में नहीं पड़े, नौकरी नहीं की, जॉब नहीं किया, बाबा ने कहा कुछ जॉब करने की दरकार नहीं, इस सेवा में लगा दिया। और हम दिल्ली में चले गए भ्राता जगदीश जी के पास, आप जानते हैं जगदीश भाई एक थे हमारे, अब वो भी उनने भी शरीर छोड़ दिया। उनके साथ 4-5 साल रहे, ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा कुछ हुआ। इस प्रकार हमारा पूरा परिवार भी ज्ञान में आ गया, सब कुछ बेच बाज के खत्म करके इस सेवा में सब लागे। 3-2 भाई थे हमारी, छोटी सिस्टर सब। हाँ, हमारे लोग एक फादर ने कहा मम्मा से बहुत प्यार था उनका, मम्मा से पूछा, मम्मा अगर ये आप जाप भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं है, यज्ञ में लगाया लेकिन जाप करे। मम्मा ने कहा नहीं, जो भृगु ऋषि बाबा ने कहा है वही करना है। मम्मा हमेशा बाबा ने कहा और मम्मा ने जी हां कहा, कभी उसमें वो चेंज नहीं किया। मेरा विचार है ये, मम्मा कभी नहीं कहती थी। जो बाबा का विचार सो हमारा विचार, ऐसी मम्मा की धारणा थी। तो हम सेवा मिल रहा कि सेवा करते रहे करते रहे, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते रहे, जहां दिल्ली में रह करके। फिर वो बीच में एग्जीबिशन बननी शुरू हुई, तो हमने वो एक चित्र, वो चित्र बनाने का एक स्टूडियो बनाया, उसमें कई आर्टिस्ट हम ट्राई किए, चित्र बनने शुरू हुए। तो देखो, और एक और बात सुनाता हूं। फिर हम एक चित्रों का सेट लेकर बाबा के पास आए, 20 चित्रों का सेट, ऑयल पेंटिंग नया नया बना के हम लाए। हिस्ट्री हॉल बन चुका था, काफी आगे बढ़ चुके थे। और बाबा और दीदी, मैं समझता हूं, उसको देखने के लिए आए। खूब देखा, देख करके इंस्ट्रक्शन दी, करेक्शन की, बहुत कुछ बताया। फिर हम उन्होंने बाबा ने हमको अपने कमरे में बुलाया। देखो और कैसे खुशी होती है। बाबा ने, मैं नीचे बैठने लगा, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, या मेरी गद्दी में मेरे साथ बैठो। और मैं छोटा, मैं बाबा के साथ कैसे बैठूंगा। फिर भी नीचे, फिर बाबा ने खुद अपने साथ बिठाया। और फिर बाबा ने महावाक्य, देखो कितना वरदान दिया, जबरदस्त। हम बताएं आपको क्या कहा बाबा ने, आप सुनो आश्चर्य, बड़ा उमंग उत्साह आपको आएगा, हमें तो बहुत आया। बाबा ने कहा बच्चे, जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी, बोलो, बच्चों की गद्दी। अभी और आगे सुनो, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, वहां कहां, बोलो, गोल्डन एज में। देखो कितना बड़ा वरदान है, वरदान दे दिया, बनेगी। जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। तो बताओ आप, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, कौन है आपका घर किसका है, बोलो, बाबा का है ना। जो भी कार्य करते हैं पहले बाबा को याद करके, अरे बाबा का कार्य है। अगर इस प्रकार से आप चलेंगे, उस बाबा के जो अपनी, जो आप समझते हैं मेरा नहीं है, बाबा का है, बाबा का कारोबार है, बाबा के लिए कर रहा हूं मैं, तो वो आप उस गद्दी के, आप बाबा की गद्दी है। तो अगर हम उसको ऐसा मानेंगे तो वो बाबा कराएगा। हम बताएं आप, अभी जो हमारा ज्ञान अमृत भवन है, प्रिंटिंग प्रेस हम चलाते हैं, वो काम करते हैं, हम नहीं करते, हम बता दें आप, ये बाबा कराता है। छोटा सा गांव है, आप बताइए, और इतनी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, वी कैन नॉट डू, ये बाबा ही करा रहा है, हम बता आपको। इसी प्रकार से आप अपना इंडिविजुअल, जो आपका अपना अपना कारोबार है, ये समझो ये बाबा का है, मैं उसका कार्य कर रहा हूं। इस तरीके से करेंगे तो बाबा, कोई असफलता हो ही नहीं सकती, बाबा कराएगा ही कराएगा, अगर हम इस निश्चय में रहते हैं तो। इसी प्रकार से हमने देखा, ये वरदान मिला तो इससे बहुत उमंग उत्साह आया, सैकड़ों प्रदर्शनियां बनी, म्यूजियम बने, मेले बने। छोटी सी जगह हमारी दिल्ली में थी, कितनी चीजें बनी, जैसे बाबा के ये बच्चे बनाओ, सीढ़ी बनाओ, ये बनाओ। कई दफा बाबा जो मुरलियों में बोलते थे तो वो हमको लेटर लिखते थे, सैकड़ों लेटर बाबा ने हमको लिखोगे, बच्चे ये बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, चित्र बना के उस सेवा केंद्र को दो। उसके बहुत रिमझिम थी उस वक्त, ये एग्जीबिशन का जमाना था। इस प्रकार से बाबा के नजदीक आए, बाबा ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा उमंग उत्साह बढ़ाया, चलते रहे चलते रहे। इस प्रकार और बहुत बातें बाबा की हैं। बाबा हमेशा अपने को तो छुपाते थे, ऑलवेज, कभी साकार प्रजापिता ब्रह्मा हम जिसे कहते हैं, कहता नहीं मुझे ही नहीं, हमेशा शिव बाबा को देखो। बाबा कहते छत तक चित्र बनाओ, बड़े बड़े बनाओ। तो बाबा भी पुरुषार्थ करते थे, पुरुषार्थ करते 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 69 में क्या बन गया, अव्यक्त फरिश्ता बन के संपूर्ण स्थिति को, 18 जनवरी को संपूर्ण बन गए। बीच में पर आते थे, मिलते थे, बाबा कहते बच्चे तुम हर हफ्ते मेरे पास आओ। ये बाबा के महावाक्य थे, दिल्ली से हर हफ्ते आओ, डिजाइन बना के लाओ, दिखा के फिर जाओ, मैं ये तो पालन नहीं कर सका। उस समय 18 घंटे गाड़ी में लगते थे, हम बताए आपको 18 घंटे, आप तो आजकल तो 12 घंटे लगते हैं, 18 घंटे आए 18 घंटे जाएं, और बड़ा डिफिकल्ट था। मतलब बाबा का बहुत इन चीजों पर ध्यान था और बहुत एक्यूरेसी बाबा चाहते थे। ये इस प्रकार से बाबा संपूर्ण हुए, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, चल रहे हैं। हमको भी क्या बनना है अब, पुरुषार्थ क्या करना है, क्या बनना है, बाप समान क्या बनना है, बोलो, अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनना है, ये है हमारा पुरुषार्थ। हमको बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनना है, ये बाबा का हम बच्चों के प्रति ये आशा है कि हम बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बन जाए। अब देखो कई साल हो गए, अब कहां तक बने कि नहीं बने, हम सोचे बने हैं कि नहीं, कहां तक बने हैं, कितना फासला उसमें है बताओ, कितना डिस्टेंस बाकी रह गया है, नजदीक पहुंच गए कि अभी देरी दूरी है, क्या कहेंगे आप लोग, अभी है फासला है कि नहीं, हाँ या ना, है तो कैसे फासला पूरा होगा, क्या करें हम, क्या पुरुषार्थ है कि हम बाप समान फरिश्ता जल्दी से जल्दी बन जाए। ये देखो क्या है, देखो देखिए संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनने के लिए पहली स्टेज क्या है, अब सोचो पहली स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज, पहली स्टेज है, मैं जो समझता हूं पहली स्टेज है, बाबा चाहते हैं कि हम विकर्माजीत बन जाएं, बस। अब हम ब्राह्मणों से कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, विकर्म नहीं होना चाहिए, विकर्म हमारी डिक्शनरी से बाहर कोई भी कर्म नहीं। देखो सोचो आप कर्मातीत बनना चाहते हैं, पहली स्टेज तो विकर्माजीत बनने की है, विकर्म ना हो। पहले बाबा कहते थे नहीं चलो छोड़ो, वो विकर्म तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल, और बाबा हमारे से उम्मीद रखते हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चों में, सिखी देवी बच्चों में कोई विकर्म नहीं होगा, ठीक है। ये तो इसमें तो सब पास है ना, है पास, पास देखो सब पास है, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया में तो विकर्म भरे पड़े हैं, विकर्म विकर्म। सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज है विकल्प अजीत, नो विकल्प, कोई विकल्प नहीं चाहिए। बाबा कहता है मेरे ब्राह्मण बच्चों में अब विकल्प नहीं होना चाहिए। पहले बाबा थोड़ा कहते थे चलो बच्चे विकल्प आता छोड़ो, कर्म में मत आओ। अब बहुत टाइम बीत गया, बहुत यमुना गंगा में बहुत पानी बह गया है, बाबा कहते हैं कि अब विकल्प भी नहीं चाहिए, विकल्पाजीत, दिस इज सेकंड स्टेज, इसमें भी सब पास होंगे, यस और नो। देखो थोड़े का है, नहीं बिल्कुल विकल्प ना है। देखो अगर विकल्प आया उसका नुकसान सुन लो क्या है, विकल्प आने से जो आपने पुरुषार्थ किया हुआ है, योग से अपनी शक्ति बैटरी चार्ज की हुई है, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सुन लीजिए आप, डरो, डरना चाहिए, वो विकल्प आ गया, बुरा संकल्प आ गया, नेगेटिव संकल्प आ गया, उससे बैटरी डिस्चार्ज होती है, नुकसान हो जाता है। इसलिए हम ब्राह्मण आत्माओं के मन में बुद्धि में अगर आने लगे विकल्प, फौरन हटाओ, फौरन एक सेकंड भी अंदर मत रहने दो। तो ये विकल्पाजीत बाबा को हमारे प्रति ये आथत है, उसको बाबा को भी है कि मेरे ब्राह्मण बच्चों में कोई विकल्प नहीं होगा, ठीक है, नो विकल्प, विकल्पाजीत बनेंगे तभी कर्मातीत के पास आएंगे। थर्ड स्टेज क्या है बोलो, थर्ड है व्यर्थ अतीत, सुन लो, नेक्स्ट टू दैट, हमारे में कोई व्यर्थ ना हो, सुन लो, नो व्यर्थ। अभी आप बैठे हैं, व्यर्थ क्या है, बैठे यहां है, पहुंच गए वो इंदौर या छत्तीसगढ़ कहीं पहुंच गए, बैठे यहां है, वहां जा सकते नहीं, कैसे जाएंगे। तो जिस समय जो संकल्प हो वो ठीक है, जिसकी जरूरत है, यानी व्यर्थ से परे चले जाओ, यानी व्यर्थ भी नहीं चाहिए। व्यर्थ ये क्यों, क्या, कब, कैसे, ये भी व्यर्थ है, परंतु ये भी व्यर्थ है कि हमें बैठे या जा कहीं रहे, ये भी व्यर्थ है। व्यर्थ से भी परे बाबा पता क्या कहते, मुरली में कई दफा कहते मेरे बच्चों में विकल्प तो है नहीं, व्यर्थ भी थोड़ा है। अभी बाबा कहते हैं कई दफा थोड़ा है ना, थोड़ा व्यर्थ है, हाँ या ना, हाँ थोड़ा है। अब व्यर्थ से भी परे जाना है, अब इसके आगे और है, फिर व्यर्थ भी नहीं चलो ठीक, क्योंकि नेगेटिव से या वो जो विकल्प से तो बहुत नुकसान है, व्यर्थ से टाइम वेस्ट है, समय हमारा बर्बाद जा रहा है। और था इसके आगे है साधारण अतीत, हमारे में कोई साधारण संकल्प नहीं चाहिए। हमारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, हमारे प्यारे बाबा में हम देखते थे ब्रह्मा बाबा को भी, उनका हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प साधारण नहीं था, विशेष था, पॉजिटिव था। हमें क्या करना है, हमें बाबा को फॉलो करना है, सी फादर करना है, तो हमारा भी हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हमारा हर संकल्प समर्थ हो, विशेष हो, ना कि साधारण हो। अब यहां तक आ चुका है टाइम कि हमारे में कोई साधारण संकल्प नहीं चाहिए फालतू ऐसा बेकार का। जैसे आप, मैं पूछता हूं अभी आप खाना खाएंगे तो खाने में कोई पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप खाए, रोटी होगी या मुख में जाएगी चली जाएगी, कोई सोचना पड़ता उसमें, क्या सोचना पड़ता है, नहीं, चाहे अंधेरा हो तब भी रोटी यहां जाएगी, नाक में नहीं जाएगी, वहां नहीं जाएगी, तब भी अपने आप मुख में जाती है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो बताइए। यानी हम कोई सोचने की बात नहीं है, बाबा कहता खाना खाते समय याद करो, वो जो साधारण जा रहा है कोई, चलो खाना खाने में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई विकल्प भी नहीं है, लेकिन साधारण गया ना वो। आप पैदल चल रहे हैं, आप अपने आप पैदल चलती है, पांव को कोई सोचना पड़ता है कि पांव आगे जाए कि पीछे जाए, ऑटोमेटिक चलना होता है, उस समय हमारा क्या संकल्प चल रहा था, व्हाट वी वर थिंकिंग, क्या सोच रहे थे, कुछ नहीं सोच रहे थे हम। आजकल हम ब्राह्मणों का टाइम कुछ नहीं में जा रहा है, सुन लो, यानी साधारण में जा रहा है, नथिंग में जा रहा है। एक होता ना स्कूटर को किक लगा दो और न्यूट्रल पे का गियर पर रख लो, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, न्यूट्रल, कुछ नहीं। तो हम ब्राह्मणों का जो समय है, मैं ये समझता हूं, वो न्यूट्रल में, उसमें भले विकल्प नहीं है, व्यर्थ भी ना हो, लेकिन समर्थ भी नहीं है। तो पुरुषार्थ अगर हम चाहते हैं बाप समान बने, हमारा हर पहले संकल्प, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये ला है, ये मनोवैज्ञानिक ला है, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, ये नियम है। ये अगर हम, वो बाबा एक मिसाल भी देते हैं ना, वो एक गांव वाले की, वो मंत्र लेने गया गुरु से, अव्यक्त बाबा ने भी बताया था, साकार बाबा ने भी, वो मंत्र लेने गया, बिल्कुल अनपढ़ था, गंवार था, उसने कहा कि मंत्र दो, गुरु ने कहा ओम नमो शिवाय, उसको याद ना है, और मंत्र दिया वो भी याद ना है, उसने कहा मैं क्या मंत्र दूं, उसने कहा तुम्हें जो चीज प्यारी है तू उसको याद कर, उसने कहा मुझे तो भैंस प्यारी है, तो उसने कहा ठीक है तू भैंस को याद कर। कमरे में बैठ के भैंस का ध्यान करता रहा, कुछ समय बाद कर, ओहो मेरे उससे सींग आ गए हैं, अब मैं दरवाजे से बाहर कैसे निकलूंगा, वही बन गया, उसको वैसा मनोवैज्ञानिक हो गया। बाबा ने बोला है ये बताओ, एज यू थिंक सो यू विल बिकम, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो यही, अगर हम साधारण सोचते रहेंगे साधारण बनेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पावर आएगी, प्योरिटी आएगी, तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें, और कुछ नहीं सोचना। बाबा कहते हैं कि ज्यादा झंझट में करने की बात नहीं, जो मैंने आपको शब्द शुद्ध संकल्प दिए हैं उसको बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। कौन आप, क्या संकल्प बाबा ने दिए, मैं कौन और मेरा, दादी कहती है रोज, मैं कौन और मेरा कौन, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, कर्म इंद्रियों का राजा हूं, अकाल मूरत हूं, ये सब बातें बाबा ने बताई है ना, वो सात गुण बताए बाबा ने, आठ सात, उन गुणों को याद करो, घर को याद करो, घर में रहने वाले शिव बाबा को याद करो और चक्कर को याद करो, कितना बाबा ने पॉइंट्स बताए हैं। ये शुद्ध संकल्प है, जितना इसको रिवाइज करते चले जाएंगे उतने आपको रियलाइज होगा। भगवानों वाच अव्यक्त बाबादा ने कहा है, जब तक रिवाइज नहीं करेंगे रियलाइज नहीं होगा। सुन लो, गो ऑन रिवाइजिंग, जब टाइम मिले इसी मस्ती में मस्त रहो। मैं कौन? बाबा का मैं। बाबा ने देखो वो पांच स्वरूपों की बात कही थी, आप सभी को याद होगा, होमवर्क दिया था कि सारे दिन में आठ बार पांच स्वरूपों को याद करो। करते हैं आप सभी? करते हैं, अच्छी बात है। कितना अच्छा है, निराकारी स्वरूप, बहुत लंबा विस्तार है उसको, फिर आकारी फरिश्ता स्वरूप, फिर निर्विकारी देवता स्वरूप, अलंकारी वो पूज्य स्वरूप और निरहंकारी ब्राह्मण स्वरूप। इन पांच चीजों को याद करो, एक सेकंड में घूम जाता है, पूरा चक्कर घूम गया है, उसको याद करो। यानी इन चीज अपने मन बुद्धि को इसमें बिजी रखो। हम भी कोशिश करते हैं, अभी आई एम ट्राइंग, कोशिश करते हैं इसमें बिजी रहे। कहते हैं हमारे पास सेवा नहीं है, कहते हैं अरे ये बहुत बड़ी सेवा है मनसा। शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना भी योग है, हम बताएं आपको। बिंदी मन बिंदी को याद करना तो है ही, वो अपने के बिंदु समझो, निराकार बिंदु, परम धाम में बैठो और शिव बाबा को सामने देखो, वो उसमें अखंड ज्योति महातत्व जैसे बिंदी लगाओ, उसकी किरणें निकल दें, उसको देखते रहो देखते रहो, उसके गुणों को थोड़ा सा याद कर लो, बहुत मजा आएगा। वो तो करना ही है, लेकिन शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करते 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 क्या होता है, पॉजिटिव थॉट से क्या आएगी, पावर आएगी और प्योरिटी आएगी। सुन लो, दो चीजें आती है पॉजिटिव थॉट से, ये शुद्ध विचारों से, एक आती है पावर, एक आती है प्योरिटी। और सत्युग में क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। देवताओं में क्या है? एक है क्राउन, किसका? लाइट का, प्योरिटी का, और दूसरा काउन क्राउन क्या है? पावर का। ये शुद्ध विचारों में रमण करने से दोनों चीजें आती है, तो बन जाएंगे देवता, बिल्कुल पक्का है। जब ऐसे करते रहेंगे अभ्यास करते रहेंगे, विकर्म होंगे नहीं, विकल्प आएंगे नहीं, शुद्ध संकल्प आते रहेंगे, आप वो फरिश्ता बन ही जाएंगे, कर्मातीत फरिश्ता बन जाएंगे, पुराने विकर्म विनाश हो जाएंगे, और क्या चाहिए। ये सिंपल और सहज पुरुषार्थ है। जब बिंदु बन बिंदु को भी याद करो, दैट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर आप ये सिंपल मेथड अपनाना चाहे, इसको भी अपनाओ, वो भी अपनाओ, दोनों बातें करो, जिससे क्या होगा, हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन ही जाएंगे। और इससे क्या होगा, कितना आप सेवा कर रहे हैं शुद्ध संकल्पों से, सारा वाइब्रेशन शुद्ध जा रही है, आपके विकर्म विनाश हो रहे हैं, प्रकृति शुद्ध हो रही है, इन शुद्ध संकल्पों के औरा से बताओ, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये सेवा करनी है। अब देखो समय तो बहुत नजदीक आता जा रहा है, बहुत नजदीक। बाबा के एक तो दुनिया का तो विनाश सामने है, अपना विनाश कब हो जाए कुछ पता नहीं, कुछ कह सकते, हमारे सामने सामने। एक साथ हमने तीन देखे, एक हमारे भाई जी को देखा, ओम प्रकाश भाई जी को सामने देखा हमने, इतने इतनी पावर वाले सोल, इतनी उन्होंने एक मिनट भी उन्होंने जाया नहीं किया सेवा सेवा के सिवाय, मेरे साथ रहे, हम उनके साथ रहे, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया, लेकिन फिर भी उनको बाबा ने बुला लिया। देखो, और दूसरी हमारी माता जी 111 साल की थी, यहां रहती थी हमारे साथ, वो भी हमारे, उनको भी सामने सामने देखा कैसे वो शरीर को छोड़ते हैं। तीसरे अभी 8 जनवरी को हमारे लौकिक भाई, बड़े भाई, जिन्होंने पहले ज्ञान लिया था, उन्होंने बहुत सेवा की सोनीपत में और जगह बहुत जगह, उनको भी सामने सामने देखा, वो जा रहे हैं, बताओ। तो मालूम नहीं, सबसे बड़ा कभी कोई जा सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए विनाश से पहले पहले हम बाप समान कर्मातीत फरिश्ता बन जाएं, इसका पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी अभी होगा, सत्युग में कभी नहीं होगा। बनना भी हमको है, भी सुन लो, बनना भी हम सभी को। और बाहर वाले अब लेट आएंगे, क्या बनेंगे, हम बनना है। बाबा को पता है कि बच्चे ही मेरे बनने वाले हैं, बस केवल अपने संकल्पों पर ध्यान करें, इस याद की यात्रा में हम लगे रहे, अपना समय, श्वास और संकल्प को वेस्ट ना करें। ओम शांति, ओम शांति।